ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. రాజయోగ శిబిర్ కే అంతర్గత్ ఆజ్ యే దూసరా సత్ర పరమపితా పరమాత్మా కా సత్య పరిచయ. కల్ ఆప్ సభీనే ఆత్మా కీ వాస్తవికతా కే బారే మే జానా సునా. జహాం తక్ ఆత్మా కా విషయ ఆతా హై జహాం తక్ ఆత్మా కా విషయ ఆతా హై వహాం తక్ ఫిర్ భీ దునియా మే ఏక్ హీ మాన్యతా హోతీ హై కి హర్ కోయి ఆత్మా కే అస్తిత్వ కో స్వీకార్ కర్నే లగే హై. చాహే ఉస్కో కోయి రూహ్ కహే, సోల్ కహే, ఎనర్జీ కహే, శక్తి కహే, పరంతు జహాం పరమాత్మా కా విషయ ఆతా హై వహాం ఆజ్ భీ దునియా మే అనేక మత మతాంతర హై, అనేక ఒపీనియన్స్ హై. ఔర్ ఇత్నే ఒపీనియన్స్ మే ఆజ్ కా మనుష్య కన్ఫ్యూజ్డ్ హో గయా హై కి ఆఖర్ భీ వో సత్య క్యా హై. ఔర్ ఇసీలియే కయీ బార్ లోగో కే మన్ మే అనేక ప్రశ్న ఉత్పన్న హో జాతే హై ఈశ్వర్ కో లేకర్ కే. ఆ దునియా మే అనేక లడాయియాం హో రహీ హై ఈశ్వర్ కే నామ పర్, క్యోంకి ये स्पष्ट करता है कि ईश्वर के बारे में कितनी अज्ञानता है. समय यही दर्शाता है कि इट्स हाई टाइम के हम ईश्वर के वास्तविकता को भी समझे. कुछ समय पहले एक बहन मिली थी, उसने बताया कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी मां से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है. उस मां ने उसको समझाना चाहा कि बेटा हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं. वो बच्चा मां से कहता है कि भगवान तो एक होना चाहिए ना, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं, और अगर ये सारे भगवान हैं तो इन सबका हेड कौन है. परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सारे भगवानों का हेड कौन है. वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसीलिए जब भी वो मां अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, त्योहार होता है तो बच्चा मना कर देता है. कहता है मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूं, वेयर शुड आई फोकस माई माइंड, मैं अपने मन को कहां एकाग्र करूं. वो कहता है इससे तो मैं चर्च में ना जाऊं, जहां एक गॉड है तो कम से कम मैं अपने मन को तो एकाग्र कर सकता हूं. वो मां को बड़ा दुख होता है कि मेरे बेटे के प्रश्न का जवाब शायद मैं नहीं दे पाती हूं, इसीलिए ये नास्तिक बनता जा रहा है. लेकिन शायद वो उस एक मां की प्रॉब्लम नहीं है. आज का जनरेशन ये सवाल पूछता है और उनके माता पिता उसका जवाब नहीं दे पाते हैं. आज मान लो कि आपका बच्चा ही आपसे पूछे तो क्या कहेंगे. इतने सारे ओपिनियंस है ईश्वर के विषय में एक बार हमने एक कार्टून देखा जिस कार्टून के अंदर एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ईश्वर है, आत्मा सो परमात्मा है। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था वो कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी देवी देवताएं हैं सब परमात्मा के रूप है, सब भगवान है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड। अगर सचमुच भगवान है तो कैन यू प्रूव इट? अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये सारी ओपिनियंस पढ़ने के बाद उसने क्या निर्णय लिया होगा कि इन सब में सत्य क्या है? क्या कहेंगे, ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है, यह सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है? समझा नहीं है, सत्य कुछ और है। वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सूंड आए तो कहा सांप जैसा है, और कान आए तो कहा सूप जैसा है। आखिर हाथी कैसा था? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, उन्हें आपको जाकर के बताना है कि हाथी कैसा है। ये सभी वन बाय वन जाते हैं। पहला जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है कि देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। थोड़ी देर के बाद चौथा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एकदम लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक सूप जैसा, पंखे जैसा है। अब ये पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या परिकल्पना करेगा हाथी के विषय में? क्या सोचेगा, कैसा प्राणी है? हर कोई आता है अलग बात कहता है, लेकिन फिर भी विश्वास कर लेता है कि इन सब ने तो महसूस किया है ना, तो झूठ थोड़ी बोलते होंगे। हो गया ऐसा कोई प्राणी विश्वास कर लेता है, अपना लॉजिक यूज नहीं करता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, आपको उसको जाकर के बताना है कि हाथी कैसा है। जो आपने समझा वो उसको जाकर के बताना है। अब ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है कि देख भाई, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता, कभी वो दीवार जैसा हो जाता, कभी वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता और कभी वो पंखे जैसा हो जाता है। अब सातवां सूरदास जिसका आईक्यू लेवल हाई था, वो इस छठे सूरदास को कहता है, हाउ कैन यू बिलीव दिस? कोई प्राणी रंग बदल सकता है लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ढांचा ही बदल दे, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? तो छठा सूरदास क्या कहता है, अरे पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो वो सातवां सूरदास कहता है, आई डोंट बिलीव दिस, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई? हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कुछ गुणों को या उस ईश्वर के विषय में कुछ महसूस किया और उन्होंने मनुष्य को बताया, मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। और इसलिए जितनी भी मतें थी, हर एक मत को स्वीकार कर लिया, अपना लॉजिक यूज नहीं किया। अब वही मनुष्य आज की जनरेशन के लोगों को कहना चाहते हैं, ये सब भगवान है, आप इसको स्वीकार करो। अब आज की जनरेशन का व्यक्ति जिसका आईक्यू लेवल हाई है, वो क्या कहता है, हाउ कैन यू बिलीव दिस, हम नहीं मानते हैं, विज्ञान ने हर बात का सबूत दिया है, क्या आप भी इसका सबूत दे सकते हो? अनेक प्रकार की बातें करते हैं। और इसीलिए सत्य से, सत्य को जितना समझने का प्रयत्न किया, कहीं सत्य से दूर तो नहीं हो गए और कोई हमें गाइड नहीं कर सका। और इसीलिए आज ईश्वर के बारे में इतनी सारी मतें हैं जो कभी कभी इंसान सोचना ही छोड़ देता है, जो भी होगा जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी जीवन में हमारे पास टाइम भी नहीं है इन सब बातों के लिए। तो हमारी हालत भी तो वही हो गई। और इसीलिए सत्य को जानना जरूरी हो गया है कि आखिर भी सत्य क्या है। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने कहा तो हमें क्या उस बात को स्वीकार करना है, नहीं, हम आपको ओपिनियन नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतने ओपिनियंस हैं जो और ज्यादा कंफ्यूज करना हम नहीं चाहते हैं आपको। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो, समझो। ये कसौटी है पांच बातें। सबसे पहली बात है, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। सत्य एक होता है, दस बातें हमारे सामने हो और हम कहे सभी सत्य है, इम्पॉसिबल। और ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड, उसको कहेंगे परमेश्वर। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, वो सर्व का है। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व परे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आती है, परमात्मा उन सभी चक्रों से पर है। मनुष्य आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में आती है, जबकि परमात्मा के लिए कहा गया वो अजन्मा है, अकाल मूरत है, जिसको काल नहीं खा सकता, अकाल मूरत है। अब जन्म ही नहीं लिया तो देह नहीं है, जिसने जन्म लिया उसको देह है, और देह है तो देह के संबंध है। परमात्मा अगर अजन्मा है तो अव्यक्त है, उसको अपनी कोई व्यक्त प्रतिमा नहीं, और देह नहीं है तो देह के संबंध भी नहीं है, उससे भी परे है। जब देह नहीं है तो कर्म नहीं है, तो अकर्ता भोगता है, न कर्म करता है न फल भोगता है, तो कर्म और कर्म के फल के चक्र से भी परे है। और कर्म जब मनुष्य करता है तो या तो वो पाप कर्म होता है या पुण्य कर्म होता है, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं, वो उससे भी परे हैं। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता है या दुख मिलता है, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा उस चक्र से भी परे है, न सुख है न दुख है। तो जो इन सभी चक्रों से पर है उसको कहेंगे परमात्मा। चौथी बात कि परमात्मा उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी उसको कहा, त्रिनेत्री उसको कहते हैं, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, और त्रिमूर्ति त्रिदेव उसको कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए कहा गया सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ और धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठ करके परमात्मा की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा। तो ये पांच बातें हैं कसौटी, जिस पर हम एक एक मत को कसकर देखेंगे, सत्य है, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब अगर पहली बात लिया जाए कि जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले परमेश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? नहीं करेंगे। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? वो किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। सत्य तो नहीं है, राइट? क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, प्रकृति सत्य है? नहीं, प्रकृति सत्य है, उसका अपना अस्तित्व है, लेकिन वो परमेश्वर तो नहीं है ना। प्रकृति, अच्छा आपका विवेक क्या कहता है? प्रकृति ही परमेश्वर है या प्रकृति परमेश्वर की रचना है? लेकिन क्या वो परमात्मा की रचना है या परमात्मा है? रचना है कहना सत्य है, रचना है कहना सत्य है। ये संसार जो चलता है तीन सत्ताओं से चलता है, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष, राइट? प्रकृति एक सत्ता है, आत्मा एक सत्ता है और परमात्मा परम सत्ता है। तीनों अजर अमर अविनाशी है। न प्रकृति का विनाश होता है, न आत्मा का विनाश होता है, न परमेश्वर का विनाश होता है, लेकिन उस सत्ता को परम सत्ता समझ लेना ये अज्ञान है, राइट? ये अज्ञान है। क्लियर? दूसरी बात, जब हम कहते हैं, जी हाँ जी, उस बात पर हम आते हैं आगे। परमात्मा को टाइटल दिया गया है करण करावन हार। करण करावन हार है, करता नहीं है, कराता है। प्रकृति अजर अमर अविनाशी है, परिवर्तन जरूर होता है। उस परिवर्तन का कार्य कराने वाला वो खुद नहीं करता है, उस बंधन में नहीं आता है। नहीं, ऐसा है जैसे कि ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य कराने वाला वो है, लेकिन सौंप दिया है उसको। जैसे आप कोई भी कार्य किसी को डायरेक्शन दे दिया आपने, करने वाला वो है ना। अगर गलत करता है तो रिस्पॉन्सिबल है, सही करते हैं तो भी रिस्पॉन्सिबल आप है, लेकिन आप उससे न्यारे हो गए क्योंकि करने वाले ने कर लिया। तो वो कर्म जो है उसके खाते में चला गया क्योंकि उसने किया, आपके खाते में नहीं जाता है। श्रेय जो जाता है करने वाले को जाता है। कोई भी कार्य बहुत सुंदर किया तो भले आपने डायरेक्शन दिया लेकिन उसका श्रेय जिसने किया उसको जाएगा ना। इसी तरह परमात्मा करण करावन हार है। डायरेक्शन अगर दे दिया लेकिन आत्मा को स्वतंत्रता भी दे दी, प्रकृति को अपनी स्वतंत्रता दे दी कि तुम ये करो। तो सृजन का कार्य, आज एक वृक्ष से बीज गिरता है, धरती ने उसको सहारा दिया और धरती ने सहारा दिया, बारिश ने पानी दिया और वो बीज प्रस्फुटित होता है, पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है। ये प्रकृति ही करती है, लेकिन वो स्वतंत्रता दी किसने? हाँ, वो बात अलग है। विश्वरूप दर्शन की बात अभी नहीं करते हैं हम, क्योंकि गीता का सब्जेक्ट ही अलग है, राइट? लेकिन अभी हम जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, ईश्वर की वास्तविकता। तो इसीलिए कहा कि ये तीन सत्ता को अपनी अपनी स्वतंत्रता है। इसलिए जो दुनिया में कहते हैं भाई पत्ता पत्ता हिलता है तो मन परमात्मा की मर्जी से हिलता है, मनुष्य का हाथ उठता है तो भगवान की मर्जी से उठता है। अब ये हाथ उठा और जाकर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहेंगे, भगवान की मर्जी हुई? नहीं, हर इंसान को, हर आत्मा को बुद्धि भी दे दी है, सही गलत को समझने की शक्ति दे दी है। आज एक छोटा बच्चा हो, उसके सामने आप झूठ बोल करके देखो, वो बच्चा क्या कहेगा, आपने झूठ बोला ना? उसको भी ये समझ है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी बुद्धि है। तो भगवान ने संसार के अंदर हर एक शक्ति को, आत्मा को और प्रकृति को, ये दोनों सत्ताओं को स्वतंत्रता दे दी है। और उस स्वतंत्रता के कारण हम समझने लगे प्रकृति परमेश्वर है। नहीं, हर बात में इंटरफियर आ जाए, आपका बच्चा 16 साल का हो जाए, उसके बाद आप कहो उसको उठो बैठो ये करो वो करो, वो बच्चा क्या कहेगा? इतनी बुद्धि है हमारे पास, कहेगा कि नहीं कहेगा? वो आपके डायरेक्शन को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह अगर परमात्मा हर बात में इंटरफियर करने लगे तो आज का मनुष्य क्या कहेगा, फिर बुद्धि क्यों दी है? अब बुद्धि देते ही नहीं थे तो हम आपके हर एक बात पर चलते थे। तो उसने बुद्धि दे दी और स्वतंत्रता दे दी। इसीलिए कर्म फिलॉसफी वहां लगती है, जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओ। ये कर्म फिलॉसफी इसीलिए लागू होती है। इसीलिए भगवान का रोल वहां नहीं है, उसने बुद्धि दे दी, अब आप अपनी बुद्धि के हिसाब से चलो। वो इंटरफियर नहीं करता है। लेकिन करण करावनहार इसीलिए क्योंकि उसने बुद्धि दे दी है, अब आप रिस्पॉन्सिबल है। अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए वो अकरता है। करण करावनहार होते हुए भी अकरता है। क्लियर? क्लियर है? दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा हम ब्रह्मास्मि, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर के हमने ये क्यों गाया, तुम माता पिता हम बालक तेरे। या तो वो माता पिता है हम बालक है, या तो हम ही परमात्मा है। दोनों तो एक साथ में पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? आत्मा सो परमात्मा कहना ठीक है या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना ठीक है? संतान है कहना ठीक है। कई बार कई लोग क्या समझते हैं, एक बड़ा परमात्मा था, उसके टुकड़े टुकड़े होकर के हम नीचे आए और अंत में जाकर उसी में समा जाना है और परमात्मा बन जाना है। जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया और बुदबुदा भी सागर बन गया। अब ये कहां तक सत्य है? गीता के दूसरे अध्याय में जब ये बात कही, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न अग्नि उसको जला सकती, न तलवार उसको काट सकती, न पानी उसको भिगो सकती, न हवा उसको सुखा सकती। आत्मा का अपना एक शाश्वत स्वरूप है, इसीलिए हर आत्मा भिन्न है। अगर सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, जबकि आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। अजर जर्जर भी नहीं होता है, अमर मरती भी नहीं है, और अविनाशी जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा टाइटल उसको मिलता है। किसी ने पाप कर्म किया तो कहेंगे पापात्मा है, किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो पापात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, देवात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन। आत्माएं परमधाम से इस संसार में अवतरित होती है। ऐसा है जैसे आसमान में सितारे हैं, हर सितारे का अपना अस्तित्व है, बिठा के रखे हैं ना, जो भी है, लेकिन हर एक का अपना अस्तित्व तो है ना। ठीक इसी तरह आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। कल का प्रश्न, कल का आत्मा का लेसन में ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई तो आगे क्लियर करेंगे। लेकिन जन्म क्यों लिया, हर एक मैं इतना ही आपको एग्जांपल देकर के कह देंगी कि मान लो कि आपको जन्म नहीं लेना है, ऊपर ही बैठना है, उसके पास बैठना है, बैठ सकते हैं। लेकिन आज मान लो कि आपके घर में बच्चे हैं, आप एक बड़े बिल्डिंग में रह रहे हो जहां 100 फ्लैट्स हैं, वैकेशन का टाइम है, आपके बच्चे को आप कहो मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं चाहती हूं तुम ऊपर ही बैठे रहो, तुमको नीचे नहीं जाना है। अब उस बच्चे के सारे दोस्त नीचे खेल रहे हैं, क्या कहेगा? क्या कहेगा? जाएगा या नहीं जाएगा? आप कितना प्यार करो उसको, भाई तू बैठ यहां, मैं तेरे को 10 प्रकार के खिलौने ला करके देती हूं, कंप्यूटर गेम्स ला करके देती हूं, मानेगा? शांति है। आप अपने बच्चे को कहो ऊपर शांति है, तुम ऊपर बैठो, नीचे क्यों जाना है? नीचे का खेल बड़ा रफ खेल है, तेरे को चोट लग सकती है, मानेगा? मानेगा? मानेगा कि नहीं मानेगा? ऐसे ही परमात्मा ने भी हमको कहा ऊपर बैठे रहो, शांति है। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? जाना है नीचे, हमें भी जाना है, उस खेल में इन्वॉल्व होना। कहा गया हमको खेल बड़ा रफ है, चोट लगेगी, दिल की चोटें भी लगेगी, हमने माना? आप जो आए हैं ना, अपनी मर्जी से आए, उसकी मर्जी से नहीं आए। उसने तो कहा बैठे रहो, है ना? तो इसी तरह परमधाम में हर आत्मा ईश्वर के सानिध्य में बैठी है, और अपनी मर्जी से जब आए तब नीचे आती है। इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। कहां से आई इतनी आत्माएं? जो है वो तो है ही है, ऊपर से भी उतरती जा रही है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ऊपर में, ऊपर में आत्माएं है ना, हाँ, नेचुरल है कि जितनी आत्माएं हैं, अब कितनी हैं वो नहीं मालूम, ये फिगर किसी ने बताया नहीं है, लेकिन हर आत्मा को नीचे आना है। जब देखते हैं भाई बहुत सो गए, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं मैं बहुत थका हूं, मुझे कोई उठाना नहीं, मैं सोना चाहता हूं, सो गया 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा, उसके बाद उठेगा या नहीं उठेगा? उसको कहो भाई तुमने कहा था सोए रहो, सोए रहो, अरे भाई वो तो थका हुआ था तब कहा था, अब तो मैं उठूंगा ना। तो जैसे जैसे जो उठते जाते हैं नीचे आते जा रहे हैं, है ना? हर एक अपना समय उठने का, उसके ऊपर कोई बंधन तो है नहीं कि तुमको अभी उठना है नहीं उठना है। तो इसीलिए आत्माएं उसका अपना फिगर है, और वो आत्माएं जब सब नीचे आ जाती है तब इस संसार के अंदर पुनः परिवर्तन होने लगता है। वो आगे एक लेसन आपका आएगा। तो इसीलिए परमात्मा का जो लेसन है कि परमात्मा और आत्मा अंतर है। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। हाँ जी, नहीं नहीं सभी आत्माएं हैं ना, पशु पक्षियों की भी आत्माएं, सभी आत्माएं हैं। हाँ हाँ जी, पृथ्वी पर ही है, दूसरे कोई भी प्लैनेट पर जीवन संभव नहीं है, ये तो विज्ञान भी मानता है। कहाँ वो सूर्य के बहुत समीप है, कहाँ वो सूर्य से बहुत दूर है, तो लाइफ संभव नहीं है। लाइफ संभव एक ही प्लैनेट पर है, इसीलिए यहां पर है, नहीं तो यान भेज भेज करके देख लिया, कहीं पर भी कोई लाइफ की एग्जिस्टेंस है ही नहीं। हाँ? क्या हुआ, समझ में नहीं आई आपकी बात? एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। किसमें? एनिमल्स में भी आत्मा है। नहीं, मनुष्य आत्मा, हां, जानवर जैसा या जानवर से बदतर भी बिहेव कर सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो जानवर में जाएगा। हर बीज का अपना स्वरूप है, अपनी पोटेंशियल है, अपनी क्वालिफिकेशन है, अपनी फीचर्स है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस बात में हम आत्मा का लेसन कल हो गए ना, कल आप प्रश्न पूछते थे, आज का लेसन छूट जाएगा। फिर जो बात क्लियर करना चाहते हैं लास्ट में आप प्रश्न लिख करके रखो, लास्ट में मुझे प्रश्न करना, ठीक है? नहीं तो आप आगे बढ़ो और सबका टाइम वेस्ट होता है। ये प्रश्न सिर्फ आपका है, सबका नहीं है, ठीक है ना? तीसरी बात, जब हम कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर है, अज्ञानता के कारण हमने दो दो बातें कही। प्रकृति परमेश्वर है भी कहा, प्रकृति परमेश्वर की रचना है भी कहा। आत्मा सो परमात्मा कहा, आत्मा परमात्मा की संतान है भी कहा। इसी तरह ब्रह्म ईश्वर है और दूसरी ओर हम कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। अब सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ हाँ, लेकिन फिर भी विवेक तो है ना। हाँ लेकिन विवेक तो है ना, अपना विवेक से समझ तो सकते हैं ना। हाँ, अभी जागृत करना है तो ये दो बातों में सत्य किसको समझेंगे? कि ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर यानी पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, वही सही है। चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, ये कहां तक सत्य है? क्या कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? आपका विवेक भी इस बात को स्वीकार तो नहीं करेगा कि कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? ऊंचे से ऊंची हस्ती और अज्ञानता के कारण कहां हमने उसको कह दिया, है ना? आज देखो जब ये बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नहीं हर एक प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है, इस अर्थ में सर्वव्यापी है। अब हर एक में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है तो एक व्यक्ति दूसरे का खून करता, ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? अगर ये कर्म आत्मा का है ये कहे तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहा था? आज आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मैं आती हूं उस बात पर आ रही हूं भाई, बाद में रखेंगे, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन आंसर बाद में, आप बीच में नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लिंक टूटेगी नहीं। हाँ। इसीलिए जो है जब कहते हैं कि घर में बच्चे हैं खेल रहे हैं और मान लो कि किसी बात पर लड़ाई करने लगे, और किसी बात पर जब लड़ाई करने लगते हैं तो आप देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे? छुड़ाएंगे, ये तो नहीं कहेंगे उसका कर्म वो जाने लड़ने दो, नहीं, आप उसको छुड़ाएंगे, आप इंटरफियर करेंगे, जहां गलत देख रहे हैं आप इंटरफियर करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक इसी तरह अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, हर एक के अंदर बैठा है और मनुष्य इतना गलत काम कर रहा है और वहां भी वो रोके नहीं, तो उसका बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। आज जब भी हमें कोई बात पूछता है या बताता है, हमें मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते हैं ना। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने? अज्ञानता से भी, अनजानेपन में भी हमारे मुख से यही निकला, ऊपर वाला जाने। सब में बैठा हुआ है वो जाने, ये कभी नहीं कहते हैं। तो जरूर वो ऊपर वाला है, तो ऊपर कहीं रहता है। जिस तरह आज माता पिता बाहर चले जाए, कहीं और जगह गए और बच्चे घर में अकेले हैं, तो खूब मारपीट भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक इसी तरह इतने गलत कर्म मनुष्य जो कर रहा है, वो यही प्रत्यक्ष करता है कि वो नहीं है, तभी तो कर रहा है। और इसी के लिए उसने गीता के चौथे अध्याय में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता, यानी मनुष्य इतने गलत कर्म करने लगते हैं, अपनी बुद्धि को भी यूज नहीं करते हैं, तब मुझे आना पड़ता है अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने। इसीलिए तो आते हैं। अगर यहां है तो कौन आएगा? अगर वो यहां ही है तो गीता में ये भगवान उवाच ही गलत हो जाता है। फिर तो मनुष्य गलत कर्म करने ही नहीं चाहिए। आज देखो प्रकृति के अंदर भी ये विशेषता है कि अग्नि के अंदर एक लोहा रख दो तो संग का रंग के कुछ देर के अंदर ही लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। संग का रंग। ठीक इसी तरह अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, वह गुणों में अनंत है, तो क्या उसके कोई गुणों का संग का रंग मनुष्य को नहीं लगता है? लेकिन तब फिर बात आती है कि शास्त्रों में ही तो कहा गया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र भी गलत नहीं है। लेकिन यह तो हो सकता है कि शास्त्र में जिस भाव से कहा गया उस भाव को हमने समझा ही ना हो, यह तो हो सकता है। तो शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने जब देखा मनुष्य के कर्म को, तो उसको सावधान करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए कुछ बातें शास्त्रों में लिखी गई। जब उन्होंने देखा कि मनुष्य पाप कर्म करने लगा है, तब मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने ये बात शास्त्र में लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे और वो पाप कर्म न करे। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय मां को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर न निकल जाए घुटना करते हुए। तो मां क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा, ये गाय उठा के ले जाएगी। अंदर वो समझती है कि गाय या कुत्ता उठा के ले जाने वाला ने एक डर बिठाया, और इसलिए बच्चा घुटना करते हुए जब दरवाजे तक आता है, बाहर कुत्ता या गाय देखता है तो क्या करता है, वापस अंदर मुड़ के आ जाता है, खुश होता है, आई एम सेफ, डोंट वरी, प्रत्यक्ष करता है। लेकिन वही बच्चा 8-10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, मानेगा क्या, करेगा? हंसता हुआ चला जाता है, मेरी मां भी कितनी भोली है, इतना भी नहीं समझती, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। लेकिन उसी बात को उसने पहले सत्य मान लिया था और सेफ रहा था, लेकिन अब जब समझदार हो गया तो उस बात को स्वीकार नहीं करता है। और हंसते हुए चला जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया, वो क्या मुझे ले जाएगा। भावार्थ ये कि जब मनुष्य ने पाप कर्म इनिशियली आरंभ किए और शास्त्र में ये बात जब ऋषि मुनियों ने कही तो मनुष्य भी पाप नहीं करता था। कोई अगर उसको पाप करने के लिए प्रेरित भी करता था तो क्या कहता था, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मना कर देता था। आज से 500 साल पहले भी इंसान यही कहता था, अरे बाल बच्चे वाला हूं, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए उस बात को भी उसने रूल आउट कर दिया। पाप करता ही जा रहा है और कोई उसको कहता भी है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, बाल वही लाइन कहता है, बाल बच्चे वाला समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। पहले अलग भाव से ये बात कहता था और आज पाप भी कर रहा है, ईश्वर को याद भी कर रहा है और फिर ईश्वर को कहता है कि वही तो छुड़ाने वाला है ना, लेकिन वो बात याद आती है वाल्मीकि जी की। बड़ा लुटेरा था, खूब लूटता था, पाप करता था। एक बार एक महात्मा जी को जब लूटने गया तो महात्मा जी ने प्रश्न पूछा, भाई तू क्यों ये काम कर रहा है, तो कहा मेरे परिवार को पालना जो है, तो कहा एक बार परिवार वालों से पूछ के तो आओ कि इस पाप में वो भागीदार है, और जब ये पाप का फल भोगने का समय आएगा तो क्या वो भी तेरे साथ इसका फल भोगने के लिए तैयार है। क्या पूछ के आता हूं, क्यों नहीं तैयार होंगे। लेकिन परिवार वालों ने क्या कहा, अरे तू कर रहा है, तू भोगेगा, हम तू तेरे भागीदार क्यों बने, हम थोड़ी कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आज मनुष्य इतना पाप जो कर रहा है किस लिए, परिवार को पालने के लिए, बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे उसके लिए। लेकिन उन बच्चों से भी पूछ तो लो कि क्या आपके पाप का फल भोगने का समय आएगा तब क्या वो भागीदार बनेंगे, बनेंगे। एक जन्म के लिए क्या बच्चा बना, ये जन्म के बाद तो वो कहां, आप कहां चले जाएंगे, उसके लिए इतना पाप कर रहे हैं, क्या ये समझदारी है। इसलिए कहा कि सर्वव्यापी ईश्वर नहीं है, कौन है सर्वव्यापी, कौन है, शैतान, बुराइयां, ये सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। और वो शैतान ये कहलवा रहा है मैं ही भगवान हूं। आज जब हिरण्यकश्यप ने ये बात कही प्रहलाद को, मैं ही भगवान हूं तो मेरी पूजा कर, यानी उस काल तक भी, प्रहलाद के काल तक भी जब ये कहा जाता था कि मैं ही भगवान हूं मेरी पूजा कर, तो उसको असुर माना गया और उसका खात्मा करने के लिए भगवान को आना पड़ा। तो आज जब मनुष्य कहते हम ही भगवान है तो कौन हुए, कौन हुए, असुर हुए या नहीं हुए, हिरण्यकश्यप हुए या नहीं हुए आज के युग के, तो उसका खात्मा करने के लिए भी तो ईश्वर को आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। इसलिए आज सर्वव्यापी कौन है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि नहीं तो ईश्वर के सद्गुण दिखाई देने चाहिए। आज शैतान सर्वव्यापी है, इसीलिए शैतानी गुण या ये अवगुण या बुराइयां चारों ओर हर एक इंसान के अंदर भी प्रविष्ट होकर के दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है। तो इसीलिए सर्वव्यापी कौन हुआ? शैतान हुआ, ईश्वर नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? पांचवी बात, जब हम कहते हैं निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक चित्रकार को अगर चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात दिखाना हो तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? जो हवा का आकार नहीं है उसको भी वो अपने चित्र के अंदर आकृति दे देता है कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है। और एकदम शांत प्रकृति दिखाना है तो वो भी दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? कि चित्र को देखकर कहेंगे पत्ता भी नहीं हिल रहा है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देता है, हवा चल ही नहीं रही है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है, तो क्या परमात्मा स्वयं नाम रूप आकार बिना हो सकता है? उसका भी अपना स्वरूप है, वो कौन सा है? तो जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पशु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, कि एक यादगार के रूप में, कि जो चैतन्य ज्योति थी वो चली गई, उसके यादगार में ये ज्योति जलाई गई कि आत्मा का स्वरूप एक चैतन्य ज्योति स्वरूप है। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है, अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप, जो गीता के अंदर विराट रूप दिखाया, उसके पहले, विराट रूप से पहले अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप जब अर्जुन ने देखा और कहा बस करो प्रभु, मैं ये तेज सह नहीं पा रहा हूं। तो तेजोमय स्वरूप, अनंत प्रकाशमान, है ना, ये परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा के साथ वो पांचों बातें लगेगी। तो हिंदू धर्म में जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति है, लिंग माना आकृति। जिस तरह ग्रामर के अंदर शब्दों के लिए स्त्रीलिंग पुलिंग कहा जाता है, ठीक इसी तरह ज्योतिर्लिंग माना जो ज्योति की आकृति। ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी ताकि उसके ऊपर मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। लेकिन ये पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, उस ज्योति स्वरूप की कर रहे हैं, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंगम कहा ताकि स्मृति रहे। और नाम दे दिया सदाशिव, गुणवाचक नाम जो सदा कल्याण करने वाले हैं। शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति, तो इसीलिए उसको शिव कहा जो सदा कल्याण करने वाले, परम पवित्र और जो शांति के साथ सागर है, शांति के दाता है। और जितने भी उनके मंदिर बने, आज भी भारत के अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंगम महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाएंगे अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, वेस्ट में जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। भारत का कोई गांव भी नहीं ऐसा होगा जहां शिव का मंदिर न हो, और इसलिए उसको कहा गया देव देव महादेव। सभी देवों का भी देव महादेव। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, नॉर्थ में जाएंगे श्री राम कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश जी की पूजा मिलेगी, तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा मिलेगी मुरुगन की, राजस्थान में जाओ रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। आज भी जब उनको देव देव महादेव कहा, महादेव यानी सभी देवी देवताओं ने भी उसकी पूजा की। रामेश्वरम में श्री राम ने उसकी पूजा की, वृंदावन चले जाओ गोपेश्वर मिलेगा, अर्थात गोपों के साथ मिलकर श्री कृष्ण ने भी उसकी पूजा की। कुरुक्षेत्र में जाओ स्थानेश्वर मिलेगा कि महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने भी जिसकी पूजा की, पांडवों से भी कराई स्थानेश्वर। तो इसीलिए कहा कि जिसकी पूजा देवताओं ने भी की। जितनी भी देवियां हैं ये देवियां कौन है? तो कहते शिव शक्ति की आरती जे कोई है, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, उसी को तो कहा महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ सदा कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता है, तो एक भोलेनाथ है एक प्रलयनाथ है, तो एक कैसे हो सकता है? शिव को कहा त्रिदेव, त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति करने वाला त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। आज भी जब भी कोई मंत्र देता है तो कहेंगे ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, फिर कहते ओम नमः शिवाय। अगर एक है तो कभी ओम नमः शंकराय बोला? क्यों नहीं बोलते? एक है तो बोलना चाहिए, नहीं बोलते हैं, क्योंकि दोनों अलग है। अमरनाथ के लिए कहा जाता है कि वहां बैठकर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई थी, जिसके साक्षी वो दो कबूतर आज भी दिखाते हैं। तो शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई? फिर तो कहना चाहिए अपनी कथा सुनाई, नहीं अमरनाथ की कथा सुनाई। तो वो अमरनाथ कौन था जिसकी कथा शंकर ने भी पार्वती जी को सुनाई? तो फिर ये एक कैसे हो गए? एक इसीलिए हो गए जिस तरह से आज दुनिया के अंदर भी हर कंट्री में अगर देखा जाए तो एक डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, और डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस मिनिस्टर भी होता है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। उसको अगर कोई भी युद्ध का ऐलान भी करना है तो जहां प्राइम मिनिस्टर रूल है वहां प्राइम मिनिस्टर की परमिशन लेना पड़ता है, जहां प्रेसिडेंट रूल है वहां प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना वो खुद नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह शंकर को भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया था डिफेंस का, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है कि जब चाहे तब दुनिया का महाविनाश कर दूं। नहीं, जब तक परमात्मा आदेश न दे तब तक वो खुद नहीं कर सकता है। इसीलिए शिव शंकर को एक समझ लिया गया। तो कहने का भावार्थ, शिव परमात्मा है, शंकर देवाय नमः। ये हिंदू धर्म में दिखाया गया। इसीलिए शंकर को भी ध्यान मुद्रा में दिखाया। किसका ध्यान कर रहा है? उनसे श्रेष्ठ कौन था का कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान किया? कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग। वहां बैठकर उसने किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। इसीलिए कई चित्रों में आपने देखा होगा, शंकर, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, सारा परिवार मिलकर के शिव की पूजा कर रहा है। इसलिए शंकर को गृहस्थी दिखाया, वो गृहस्थी है। और शिव को कहा सबसे परे है, सारा परिवार मिलकर के शिव की पूजा कर रहा है। तो देव देव महादेव, हरेक देवों का भी आराध्य परमात्मा है। इसलिए श्री कृष्ण ने भी उसको याद किया, तो श्री राम ने भी उसको याद किया, देवियों ने भी उसको याद किया, उससे शक्ति प्राप्त किया, है ना? ये तो ही भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाए, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन आज भी मक्का जब हज करने जाते हैं तो मक्का में काबा का पवित्र पत्थर है। और इस पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है कि जब इस्लाम धर्म में भी मतभेद हो गया ईश्वर को लेकर के, तो उस समय कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से वो पत्थर गिरा था, जिस पत्थर को स्वयं मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का के अंदर स्थापित किया। और इसीलिए ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब तक जीवन सफल नहीं हुआ। इसलिए हर साल इनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वो वहां जाने के बाद क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है और इस पवित्र पत्थर को चूमता है, और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहता है जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। हे परवरदिगार, परमेश्वर के लिए कहा, नूर इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, नूर यानी तेज, प्रकाश। हिंदुओं ने ज्योति कहा, उन्होंने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए तो क्रिश्चियन धर्म में जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा धर्म स्थान माना जाता है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए तो गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, है ना, अकाल मूरत, सारी जो महिमा गाई है इतनी क्लियर शब्दों में कही गई है। और इसीलिए कहा जाता कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। एक नूर, जो गुरु नानक देव ने कहा एक नूर परमात्मा के लिए, तो उन्होंने भी नूर कहा। और आगे जाए बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन महात्मा बुद्ध स्वयं भी ध्यान मग्न है। किसका ध्यान कर रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो आज भी कहा जाता जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, जिसका नाम दिया चिंकुन शेकी। चिंकुन शेकी का मतलब है शांति का दाता, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। इसीलिए वो मेडिटेशन करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने भी किसका ध्यान किया? उस निराकार का ध्यान किया। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? महावीर ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो भी ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहा सिद्धशिला का। सिद्धशिला माना जो सर्वश्रेष्ठ है, जो निराकार है, उसका ध्यान किया। और आगे जाए पारसी धर्म में, तो कहा जाता है पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, अखंड ज्योति स्वरूप। तो सर्व धर्म मान्य क्या है? सर्व धर्म मान्य एक ही है, जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, सिद्धशिला कहा, एक नूर कहा। सर्व धर्म में देवों का देव वो एक ही दर्शाया है, भले नाम अलग अलग दिए, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। उसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उसने कहा मैं भी उसको याद करता हूं, मालिक को, तुम भी उसको याद करो। लेकिन हमने क्या किया? उस मालिक को भूल करके साईं बाबा की ही पूजा करने लग गए। तो हम राह भूले कहां से, जब सबने उसकी ओर इशारा किया, देवताओं ने भी उसके ओर इशारा किया, तो हम राह भूले कहां से? और इसीलिए आज राह भटक गए हैं, और राह भटकने के कारण आज ये हाल हुआ है। आज जिस तरह से कोई बच्चा अनाथ हो जाए, राह भटक जाए, तो उसकी कितनी दुर्गति होती है। तो आज जो इंसान की दुर्गति हुई है, उसका कारण क्या है? राह भटक गए। हम भी उस परमात्मा से बहुत दूर चले गए और उसको याद ही नहीं करते हैं, दूसरे दूसरे को याद करते हैं। अब 0 बल्ब और सूर्य दोनों का प्रकाश में तो अंतर होगा, शक्ति में भी अंतर होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह से जब आत्माओं को हम याद करते रहे, उनके पास जितनी शक्ति होगी उतनी तो शक्ति मिलेगी, और जब इतनी शक्ति काफी नहीं है तो पाप कर्म बढ़ते गए, क्योंकि उसको हम भूल गए, उसको याद ही नहीं किया। और इसीलिए वही सर्वोच्च शक्ति, दूसरी बात सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। जो स्वयं उत्पन्न हुआ है उसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, शिव शंभु। और आगे जाए, सभी चक्रों से पर है, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है। इसलिए गीता में कहा मैं अजन्मा हूं, काल मुझे नहीं खा सकता है, मैं महाकालेश्वर हूं। कालों का भी काल ईश्वर मैं हूं, इसलिए महाकालेश्वर की भी उज्जैन में पूजा होती है। अव्यक्त स्वरूप, जिसको कोई देह है ही नहीं, इसलिए आज तक भी उसकी पूजा अव्यक्त स्वरूप में ही होती है, कोई दैहिक स्वरूप में नहीं होती है, अव्यक्त है, न देह के संबंध है। आज भी जब शिव का मंदिर बनता है और अगर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो शिवलिंग को भी द्वार से नहीं लाया जाता है। कहां से लाते? ऊपर से उतारा जाता है, ऊपर का गुंबज नहीं लगाते हैं और ऊपर से उतारा जाता है। भक्ति में भी इतना सुंदर यादगार है कि एक परमात्मा ये जो अवतरित होते हैं, बाकी सभी मूर्तियों को द्वार से लाया जाता है। अर्थात सभी देवताएं संसार में अगर आए तो कोई ना कोई मां के गर्भ से आए हैं या उत्पत्ति के आधार से आए, बाकी वो एक परमात्मा ही है जो स्वयं अवतरित होते हैं, है ना। तो सभी चक्रों से पर है, अकर्ता भोक्ता, न पाप है न पुण्य है, सुख दुख से परे, लेकिन कहा हरि, दुख हरने वाला, सुख देने वाला, है ना। जितना उस परमात्मा को याद करते आत्मा सुख का अनुभव करती है और उसका दुख दूर होता है। जिस तरह प्रकाश सूर्य है तो सूर्य के प्रकट होने से ही अंधकार अपने आप उस प्रकाश में विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उसके आने से ही मनुष्य जीवन के अंदर जो दुख दर्द है वो विलीन होने लगता है और सुख की अनुभूति करने लगता है। उसके लिए हमें मांगने की जरूरत नहीं कि हे प्रभु हमें सुख दो, शांति दो, ये दो वो दो, नहीं। बाहर सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, सूर्य से मांगते नहीं हो कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे। सागर के पास खड़े होकर समुद्र से ये मांगते नहीं है कि हे समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे। खड़े रहो, मिलेगी। ठीक इसी तरह ईश्वर से भी मांगने की जरूरत नहीं है। आप उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करो, अपने आप उसकी अनुभूति होने लगेगी, वो दुख दर्द हरने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। क्योंकि जहां ज्ञान का प्रकाश है, दुख दर्द की अनुभूति क्यों है? अज्ञानता। तो ज्ञान का प्रकाश आने से अपने आप दूर होते हैं। और वही सर्वज्ञ है, इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। और तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो प्रतीक है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, जहां से उनकी उत्पत्ति हुई। इसलिए इन तीन देवताओं का भी जन्म नहीं दिखाते हैं, उत्पत्ति दिखाते हैं। उत्पत्ति कहां से हुई? कहां प्रकाश से हुई। और सर्व गुणों में अनंत शिव के जितने भी मंदिर है इस संसार के अंदर, हर एक मंदिर का नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। तो अनंत गुणों का भंडार है ना, स्वामी है। तो सर्व धर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। तो ये पांचों बातें एक के साथ लगती है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछी जाती है, आपका नाम क्या है, नाम बताया जाता, फिर आजकल तो हर जगह फोटो आइडेंटिटी चाहिए, वही है या दूसरा, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के परिचय में भी ये पांचों बातों को देखा, जिसका नाम है सदाशिव, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो, देवों के देव, है ना? उसका स्वरूप है निराकार ज्योति पुंज, प्रकाश स्वरूप, अनंत प्रकाशमान, दिव्य तेजोमय स्वरूप, लाइट, नूर, जो भी कहो, निराकार स्वरूप, जिसकी कोई दैहिक आकृति नहीं है। और उसके क्वालिफिकेशन गुणों में अनंत है, सर्वधर्म मान्य सर्वोच्च शक्ति। और उसके एड्रेस, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जो परमधाम का वासी है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो स्वयं दिव्य प्रकाशमान है। ये गीता में भगवान ने कहा, मैं उस परमधाम का निवासी हूं, जिसको हमने कहा ऊपर वाला है। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। आज इंसान के मन के अंदर ईश्वर के बारे में अगर इतने प्रश्न है, यही स्पष्ट करता है कितनी अज्ञानता है, इसीलिए तो प्रश्न है। और ये प्रश्नों के कारण ही इतना तो पाप कर्म होने लगा है, अज्ञानता के कारण है। आज पाप क्या है? अज्ञानता के वश किए गए कर्म, जिसको मनुष्य ने सही समझ लिया कि ये तो होता ही है। और इसीलिए ऐसा जब अधर्म हो जाता है, तब परमात्मा को इस संसार में आना पड़ता है, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना करने। सत धर्म यानी जो श्रेष्ठ धारणा है। हाँ, वो किस रूप में आएगा? तो सातवें अध्याय में कहा है, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकता है। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। तो अति साधारण स्वरूप ये मनुष्य का है, अति साधारण, इसीलिए मूढ़मती मनुष्य उसको पहचान नहीं सकते हैं। और वो अगर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाए तो लोग उसको उनका काम करने देंगे या सेल्फी खिंचवाने पहुंच जाएंगे? क्या करेंगे? हाँ, आजकल तो कुछ भी हुआ सेल्फी लेना, सेल्फी लेना, सेल्फी। अरे भाई, उसको अपना काम तो का, इसलिए उसने कहा मैं साधारण रूप लेकर, ताकि कोई सेल्फी लेने आवे ही नहीं मेरे पास में, और मुझे अपना कार्य तो करने दे, है ना? तो अधर्म का नाश। और आज से कुछ साल पहले आप लोग ने भी सुना होगा कि भारत के अंदर एक समय, एक दिन ऐसा आया कि जब गणेश जी ने दूध पिया, है ना, और कितने मंदिरों में लाइन लगी थी, रात रात लाइन लगी थी दूध पिलाने के लिए। और उस समय इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, फिर भी आधा घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर ये न्यूज फैल गई थी, और दुनिया भर के साइंटिस्टों ने उसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया। और क्या निकला रिसर्च में? कुछ पाया? नहीं पा सके। तो कई चीजें ऐसी है जहां विज्ञान के पास भी उसके उत्तर नहीं है। और इसीलिए कहा जाता, वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिन्स। आध्यात्मिक विज्ञान है, आध्यात्मिकता भी विज्ञान है, लेकिन जहां साइंस के पास उत्तर नहीं वहां से तो आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। विज्ञान भौतिक जगत के साथ डील करता है, फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, रिसर्च करता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान मेटाफिजिक्स के साथ डील करता है। मेटाफिजिक्स को लेकर के सारे प्रश्न का उत्तर उसके पास है। वो दुनिया के भौतिक जगत के साइंस की बुद्धि से उसको समझा नहीं जाता है। इसलिए जहां से विज्ञान पूरा होता है, निरुत्तर हो जाता है, वहां से आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। तो आध्यात्मिकता भी विज्ञान है और इस विज्ञान को भी समझना पड़ता है। और जब उसको समझने लगते हैं तो इतना सुंदर अनुभव, जिस तरह से विज्ञान जब एक्सप्लोर करता है, रिसर्च करता है, तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो ले आता है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक विज्ञान को भी जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपको किसी को प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप उसका रियलाइजेशन होने लगता है। ट्राई तो करो, क्योंकि आज मैं उत्तर तो दे दूं आपके, लेकिन क्या आपका विवेक उस बात को स्वीकार करेगा? बिना रियलाइजेशन को उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हमारा यही एक निवेदन है, आप इसको एक्सप्लोर करो, आप उसका रिसर्च करो और उसको रियलाइज करो, और रियलाइज करते हुए उसको एक्सपीरियंस करो, क्योंकि तब तक आपके मन में हजारों प्रश्न रहेंगे और निरुत्तर ही रहेंगे। साइंस के दिमाग से स्पिरिचुअल साइंस को समझा नहीं जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति।